परमात्मा जो है सचित आनंद रूप से सब जनों के मन सदा ही एकदम प्रत्यक्ष के माफिक है तो प्रत्यक्ष ही किंतु एक करके उसे विवेक और विचारने के साथ यह बात समझ में आया है कि ये जो पदार्थ देखने में आ रहा है ये तो सब विनाशील है और जो सत्य जो वस्तु है जो नित्य है वो सदा कायम रहे वो परमात्मा है और वह परमात्मा चेतन है। चेतन के ही प्रकाश से थी उसी के सता सपूर्ति से सारी संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हुए। निराकार के सहित ही साकार के ध्यान की बात है। तो निराकार जो है उस विषय में तो ऐसे ध्यान करना चाहिए कि आनंद जो है वो निराकार है, आनंद का कोई आकार नहीं। अपने को कहीं सात्विक सुख हो है, सात्विक आनंद हो है, तो वह आनंद का कोई आकार नहीं है। सत्संग से, सत्शास्त्र के अभ्यास से, ज्ञान वैराग भक्ति से जो कोई आपने एक सुख मिला है तो वो सात्विक सुख है। तो परमात्मा इससे विलक्षण है। ये जो सुख है जिसको सात्विक सुख है, जिसको जड़ है, वो परमात्मा चेतन है। यानी आपने जो आनंद हुआ है वह आनंद का आप ज्ञाता हूँ और आनंद होना ये है। और वो जो परमात्मा का स्वरूप है वह स्वयं चिन्मय स्वरूप है, चेतन हुई आनंद है, उससे कोई अलग आनंद नहीं है। तो परमात्मा का संकल्प में या संसार है तो संकल्प कोई चीज नहीं है, वास्तव के बीच में संकल्प करने वाला है वही वास्तव में पदार्थ है। तो वो चेतन है और चेतन ही आनंद है। चेतन भी निराकार, आनंद भी निराकार, और चेतन आनंद दो वस्तु नहीं है, वो एक ही वस्तु है। चेतन है सो आनंद, आनंद है सो चेतन। यानी मैं आनंद अपने आप को अपने ज्ञान है, वही आनंद अपने बाहर भीतर नीचे पर परिपूर्ण है। वही रंग भूतानंद अचरण चरण बचा, वह परमात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर भीतर है। चराचर जो है सो परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि भगवान कह रहे कि जीवात्मा मेरे अंश है। इस वास्ते अंश से अंश कोई भिन्न वस्तु नहीं, तो सब कुछ सो परमात्मा का स्वरूप है। घटाकाश है सो महाकाश से अलग नहीं है, किंतु सूक्ष्म होने के कारण से थी वो जानने में नहीं आता है। वो है शब्द नहीं। जिसके विश्वास है परमात्मा है उसके लिए एकदम प्रत्यक्ष है, और जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए होते हुए भी नहीं है। तो परमात्मा है इस प्रकार को जो विश्वास है उसके लिए परमात्मा शब्द नहीं है। तो ऐसा समझे कि परमात्मा शब्द नहीं है। ध्यान जो है सो एकांत और पवित्र स्थान में करना चाहिए। तो ये बहुत ही एकांत स्थान पवित्र स्थान है, और आसन लगाकर बैठना चाहिए। स्थिर सुगम आसन में स्थिरता पूर्वक हो, सुख पूर्वक हो, ये सो आसन है। तो ऐसे अचल होकर के बैठे और ऐसे करे कि नीचे ऊपर बाहर भीतर आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। तो परमात्मा जो है तो अपने शरीर के बाहर भीतर परिपूर्ण है। तो वे आनंद है परमात्मा, सागर की यूं है। उस जैसे कोई सागर में गोतु लगा रहे तो लगे चारों तरफ जड़ ही जड़ है। इसी प्रकार से जैसे गंगा में गोतु लगाने से मनुष्य के मन बुद्धि इंद्रियां और रोम रोम के यहाँ शीतलता परिपूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से थी सुनने की आनंद के सागर में गोते लगाने से मैं वहां आनंद प्रवेश कर जा रहा है। वास्तव में तो आनंद पहला से ही है, किंतु नहीं प्रतीत हो इस वास्ते यह बात बतलाई जा रहा है। आनंद जो है वही अमृत है, वही असली रस है। ऐसे जो अमृत में निराकार जो रस रूप जो परमात्मा को जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद घन है। तो ऐसे सच्चिदानंद घन के माने डुबकी लगा रहे या मैं उसके नीचे ऊपर बार उतरे परमात्मा का स्वरूप कोई अनुभव करे। ऐसा जो ध्यान है वो बहुत ही उत्तम है कि परमात्मा सब जगह के मां है और अपना सब शरीर और संसार है जिसका ये उसकी कल्पना है और वो कल्पना ने उठा ले तो यहाँ परमात्मा यही जा रहे। अगर वह परमात्मा सच नाम धन है, सत माने है और चेतन माने वह ज्ञाता है, साक्षी है, केवल है, चेतन है और वह चेतन वही आनंद है। इस प्रकार से समझ करके उसके सवाल कुछ नहीं है और सबको बात कर दिया है और केवल विज्ञान में परमात्मा को ही ध्यान कायम रखे। दूसरी तरफ से यह है कि ऐसा आनंद है कि अपने बार भीतर नीचे ऊपर आनंद ही आनंद है और वो सत है और यह जड़ वस्तु जो है, माई वस्तु जो है, ये शरीर आदि है, ये एक प्रकार से नहीं है। इस ग्राम में आनंद ही आनंद है। जैसे आकाश के मन और तीव्रा सा दिख है नेत्रों के दोष के कारण, तो तीव्रा नहीं है, आकाश ही है। आकाश तो भावरूप है और तीव्रा कल्पना मात्र है। इसी प्रकार से अपना जो शरीर है ये तो कल्पना मात्र है, वह परमात्मा से वास्तु के वहाँ है। इसमें जो परमात्मा की प्रतीति न हुई और संसार की प्रतीति हुई, ये एक प्रकार से थी अज्ञान है। जैसे अज्ञान के कारण से पूर्व में पश्चिम दिखती है तो वो दिग्भ्रम है, तो भ्रम के कारण से जो वस्तु है वो तो नहीं दिखती और नहीं है वो दिखती। तो ऐसे समझ करके कि वो परमात्मा यहाँ सुंदर की एकदम स्वयं है और उसके स्वर कुछ वस्तु नहीं। संसार तो स्वप्नवत है तो परमात्मा वास्तव के बीच के मनसो है। ऐसा समझ करके जो वास्तव के मन है उसी को भाव और उसके साथ सबको अभाव। इस प्रकार को जो परमात्मा को जो ध्यान है जो निराकार को ज्ञान है, निराकार के विषय में या मानता है या समझ है या निश्चय है, ये ही एक प्रकार से धारणा है और धारणा तो आगे जाकर के जो फल है वो ध्यान है। और वही परमात्मा जो निर्गुण निराकार रूप से सब ग्रह के मन सम भाव से जो स्थित है, वो परमात्मा सब ग्रह के बीच के मां प्रत्यक्ष एकदम है। श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर है। श्रद्धा विश्वास होने से मन में प्रेम होता है और प्रेम होने से देह की व्याकुलता होती है और देह की व्याकुलता होने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान आकाश के बीच के मां एकदम प्रत्यक्ष की माफक है, विराजमान हो रहे हैं। भगवान अपने नेत्रों से हम लोगों के ऊपर अपने गुणों की वर्षा से कर रहे हैं, क्योंकि भगवान एक गुणों के पुण्य है। भगवान के नेत्रों से गुणों का विकास होकर के हमारे नेत्रों में प्रवेश होकर के हमारे सारे शरीर में गुण से परिपूर्ण हो जाते हैं। भगवान में अंत में क्षमा दया शांति क्षमता संतोष सरलता ज्ञान वैराग भगवान उनको संभाव से देखते हैं, तो एक प्रकार से वो क्षमता हमारे भीतर में गुण के मन बार भीतर में परिपूर्ण होने से कोई भी दोष छेड़ नहीं रह सकता। भगवान जो है समझो की प्रेम भाव से देखते हैं, मानो हमारे शुष्क हृदय के बीच में प्रेम कितनी जागृति है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एक समझो की प्रेम प्रेम में प्रेम की ही मूर्ति हो गए, मेरे बाहर भीतर नीचे ऊपर प्रेम ही परिपूर्ण है। वही आनंद के रूप में दिखा है, वही उसी को अमृत कहते हैं। ऐसे आनंद की जिस आनंद की कोई सीमा नहीं, मैं एक अपने प्रेम ही की मूर्ति हूँ, भगवान भी प्रेम की मूर्ति है। भगवान हमारे ऊपर समझो कि ज्ञान भाव से देखते हैं, तुम्हारे मन बुद्धि में ज्ञान की परिपूर्णता होने से ज्ञान ही ज्ञान प्रतीत होता है, ज्ञान की बहुलता प्रतीत होती है। भगवान समझो कि हमारे बाहर भीतर नीचे ऊपर विवाह का रूप से पहले से ही थे, पर वही भगवान एक प्रकार से हमारे सामने आकाश के नीचे साकार के रूप में प्रकट होकर के प्रतीत होते हैं। भगवान का जो स्वरूप है, जो धातु है, वो धातु तेजोमय धातु है। भगवान का स्वरूप तेजस है, हम लोगों का स्वरूप है स्वरूप पार्थिव है, इसमें पृथ्वी की प्रधानता है, इसमें तेज की प्रधानता है। वही तेज का पुण्य आकाश के बीच में विराजमान हो करके एक प्रत्यक्ष की माफक स्वरूप भगवान से दिख रहे हैं। उनके चरण बड़े सुंदर और कोमल है, उनको छूने से शरीर में रोमांच उठते हैं। उनके चरण बहुत ही सुंदर और कोमल चिकने और चमकीले हैं। इसी प्रकार से उनकी अंगुलियां जो है उससे भी बढ़कर सुशोभित हो रही है। उनके वहाँ नाखूनों की ज्योति अलग ही है, जैसे कोई रतन जली हुई हो, और उनके दोनों पीढ़ियां और दोनों गोले जम रहे भी इसी प्रकार से थी, चमकीली है और चिकनी है। और भगवान पीताम्बर पहरे हुए, जिससे उनका सारा बदन सारा शरीर जो शरीर में चमचम चमक रहा है, और कमर जिन की पतली है, नाम एकदम भीड़ है, कमर के पुष्प की माफक गौर है, और उदर के ऊपर तीन रेखा पड़ती है, चार भुजा है, वो चारों भुजा गोड़ों से नीचे तक लंबी है या गोड़ों तक लंबी है, और दो भुजा ऊपर को उठी हुई है, दो नीचे को पसरी है, चारों भुजाओं के वहाँ अंगूठी पहरे हुए, कड़ा पहरे हुए, बाजू में बांधे हुए, और भुजा चारों ऊपर से मोटी नीचे से पतली है, और बहुत चिकनी है, चमकीली है, सुंदर है और कौन है। भगवान की छाती है सो चूड़ी है, जिसको बखस्थल कहते हैं, और भगवान के गले में अनेक प्रकार की माला है, भगवान बनमाला पड़े हुए हैं, पांच प्रकार के पुष्पों की माला भगवान ने सो धारण कर रखी है, वो नाभि तक है, उससे नीचे सो लड़ती है दूसरी माला नाभि तक है, और भी रत्नों की मोतियों की और सोने की माला जो पैर रखी है, और हार पैर रखे हुए अनेक प्रकार के आभूषण भगवान धारण कर रखे हैं, कोष तो मई सो धारण कर रखी है, भगवान के कंधे पुष्ट है, और गला जो सो आपने लम्बा है, थोड़ी सुंदर है, और भगवान हंस रहे हैं, जिसे भगवान के दांत दिखते हैं, दांतों की पंक्ति मोतियों की पंक्ति हो, उनको हीरों की पंक्ति हो, भगवान मुस्करा रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं, उनकी बाणी बड़ी गंभीर और बहुत ही सुंदर और बहुत ही कोमल और बहुत ही प्यारी और मधुर है, मानो कानों के लिए अमृत के समान है, भगवान का स्पर्श आंखों के लिए अमृत के समान है, भगवान का दर्शन नेत्रों के लिए अमृत के समान है, भगवान में जो सुगंध है वो नासिका के लिए अमृत के समान है, भगवान का दर्शन भाषण स्पर्श ये सब एक प्रकार से थी अलौकिक है और रसमय है, अमृतमय है, प्रेममय है। भगवान बोलते हैं तो उनका अर्श और अदर मैंने नीचे रूप के दोनों होठ ऐसे हालते हैं, तो उनकी चाल को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, मनुष्य मुग्ध हो जाता है, भगवान मानो हम लोगों को मोहित कर रहे हैं, जैसे कोई अपने जादू से किसी को मोहित करे। भगवान का जो देखना और हम लोगों की तरफ में दृष्टि डालना, दृष्टिपात करना, ये प्रकार से अपनी तरफ आकर्षण करना है। भगवान की नासिका बहुत ही सुंदर है, और दोनों कपोलियों में गाल एकदम चमकीले और बहुत कोमल सुंदर है, और कुंडलों की आभा उस पर पड़ती है, उससे और भी शोभा बढ़ जाती है। दोनों कान विशाल है, कानों के वहाँ मकर आकृत है, रत्न जड़े थे सोने के कुंडल है, और वो जल जल चम चम चमक रहे हैं, दोनों नेत्र खुले हुए हैं और हर वक्त खुले रहते हैं, कभी भगवान तर्क नहीं मारते और एक टके मानो हमारी तरफ देख रहे हैं, हम भगवान के नेत्रों से नेत्र मिला रहे हैं, भगवान हमको देखते हैं, हम भगवान को देखते हैं, हम नेत्रों से भगवान को ऐसा देख रहे हैं कि मैं भगवान को हम अपने में पी जाए प्रवेश कर जाए या एक प्रकार से देखते हैं। भगवान के नेत्रों से जिन जो अपने प्रकाश ज्ञान की ज्योति एक प्रकार से प्रकाशित हो रही है, हम लोगों के ऊपर ज्ञान और अन्न और शांति का प्रभाव डाल दें, जिससे हमारे नीचे प्रभाव लेकर मानो शांति की कोई बाढ़ आ गई हो, शांति का सुवर्ण उजर गया हो और उसके बीच में हम एकदम मगन हैं। भगवान का जो ललाट है बहुत ही चमके है और उसके ऊपर से भारी तिलक हो रहे हैं और उस ललाट के ऊपर एक प्रकार से माने श्रीधारी तिलक सुशोभित हो रहे हैं और शीश के ऊपर काले रंग के केश गुणे हुए केश हैं और उस पर रत्न जैन सोने का मुक्त से भगवान बांध रखा है। भगवान के मुखार बिंद के चारों तरफ आपने भगवान के प्रकाश की किरण खिली हुई है, जैसे सूर्य के चारों तरफ किरण खिली हुई हो, किंतु सूर्य में जो गर्मी है वो गर्मी भगवान में नहीं है। भगवान का स्वरूप शांति में है, दिव्य है, अलौकिक है और प्रकाश उससे सभी बढ़ करके है, शांति चंद्रमा से भी बढ़ करके है, सुंदरता कामदेव से भी बढ़ करके है, क्षमा पृथ्वी से भी बढ़ करके है, सभी बातें भगवान के अलौकिक और अद्भुत है। हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान पुरुषम शाश्वतम जिव्यम आदि देवम अजुम विहुम। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्तुति है कि प्रभु आप ही जो परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, शाश्वत पुरुष हो, अज्ञ अविनाशी हो, सर्वव्यापी हो। प्रार्थना यही है कि प्रभु एक प्रकार से ऐसा आपका ध्यान हर वक्त बना रहे, आप कभी ऐसे नहीं भूले और आपके मन परम प्रेम है, परम श्रद्धा है और सुंदर की विशुद्ध प्रेम है, यही आपसे प्रार्थना है। आप हमारे सब कुछ है, आप हमारे भाई बंधु माता पिता सखा सुन धन प्राण जीवन सब कुछ हमारे आप ही हैं। आपका जो दर्शन भाषण सफर से वार्तालाप सभी ऐसे अमृतमय है, रसमय है, मधुर है। आपका दर्शन भी मधुर, आप का स्वरूप भी ऐसे मधुर है, आपका नाम भी मधुर, आपके गुण भी मधुर, आपका चरित्र भी ऐसे मधुर, आपका प्रभाव भी ऐसे मधुर, आपके आभूषण भी मधुर, आपका सब कुछ ऐसे मधुर है। जब आपका प्रत्यक्ष मिलन होता है तो फिर उसको अपने आपका होश नहीं रहता है, केवल आपका उसको ज्ञान रहता है और आपके साथ किसी का भी ज्ञान नहीं रहता। जब फिर थोड़ी देर के बाद ज्ञान होता है तो फिर आपके साथ की माँ जब अपने सिंह की मिलन होता है वो अलग मिलन होता है, वहाँ लज्जा भय मान बड़ाई और ये सब किसी में नहीं रहते हैं। वहाँ स्तुति और प्रार्थना ये भी सब समाप्त हो जाते हैं। भगत की चेष्टा सारी भगवान के लिए और भगवान की भक्त के लिए इस प्रकार से थी, मानो उत्तर उत्तर जो है अल्लाह भगवान को अलादित करने के लिए भक्त की सारी चेष्टा आया करती है। इस प्रकार से थी आपने देख करके इसको जो इस रस को हर वक्त पालन करता रहना चाहिए, ऐसा ध्यान दिन रात हर वक्त बना रहे ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए।
इसमें दो बात है, एक बात तो यह पूछी गई कि भगवान जो आयुध धारण करते हैं इस विषय के मां कहना चाहिए, इसका क्या रहस्य है, क्या तत्व है। तो वास्तु के बीच में तो भगवान ही जाने, भगवान के आयुधों के विषय में मुझे क्यों धारण करते हैं, इसका क्या रहस्य है, क्या तत्व है। एक अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान बताया जा सकता है, तो वो ठीक भी हो सके और नहीं भी हो सके। भगवान जो है उनका प्रकट होना, अवतार लेना का तीन हेतु गीता में बताए गए कि परित्रणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृत नाम और धर्म संस्थापनाय संभवामी जुगे जुगे। भगवान कहते हैं कि मैं जो प्रकट होता हूँ क्यों, कि साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। ये भगवान के जो आयुध हैं ये दुष्टों के संहार करने के लिए हैं। एक तो बाहर के दुष्ट होते हैं और एक भीतर के। बाहर के तो राक्ष आदि जो है, दैत आदि जो है, उनको मारने के लिए भगवान हर वक्त जो है हथियार धारण किए अपने तत्व रहते हैं, तो कोई भी बाहर का शत्रु हमारे भजन ध्यान में विघ्न नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारे प्रभु सब प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। और यह रक्षा की भी है, जब जब ऐसी बात आई है तो भगवान ने रक्षा की भी है। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश को मारने के लिए कृपा पैदा की, तो भगवान का चक्र जो है स्वयं उनकी रक्षा करते थे। तो जब वो कृपा मारने के लिए आई प्रहलाद को, नहीं प्रहलाद को नहीं अम्बरीश को, प्रहलाद की भी बात है इसलिए प्रहलाद का नाम आ गया। अम्बरीश को वो मारने के लिए दौड़ी तो सुदर्शन चक्कर एक थर चल करके उसको खत्म कर दिया, कृता को मार डाला। और ये चेतावनी दी हम अपने दुर्वासा को कि तुम अब सावधान हो। तो दुर्वासा बेचारा चारों तरफ भागता हुआ, कहीं ठोर नहीं मिली। आखिर में भगवान के पास क्या, तो भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, उसी की तू शरण जा, और कोई दूसरा तुम्हारे लिए उपाय नहीं है। और वहां आया, दुर्वासा हाथ जोड़े आए, किंतु अम्बरीश उसके पैरों में हाथ जोड़े तैयार है। दुर्वासा त्राहिमान त्राहिमान, रक्षा करो रक्षा करो। तो अम्बरीश एक प्रकार से उस सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं, हे देव इस ब्राह्मण की आप रक्षा करो। तो यह भक्तों का भाव। और भगवान के चक्र की बात आपके समझ में आई होगी, प्रहलाद का नाम इसलिए आ गया, इसी प्रकार से थी। प्रहलाद भगवान की भक्ति के वहां डटा रहा। हिरण्य कश्यप ने बहुत कुछ समझाया, किंतु प्रहलाद कहा कि मेरे बस की बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति को छोड़ नहीं सकता। तो संगमर्क को कह दिया कि इसको तुम मार डालो। तो संगमर्क ने कृपा पैदा की, तो कृत्या को प्रहलाद पर छोड़ दी। तो उसी वक्त जो सो भगवान का चक्कर चला, कृत्या का भी नाश कर डाला और संगमर्क को भी मार डाला। फिर उसने देखा कि मेरे निमित्त से गुरु पुत्र मारे गए। तो प्रहलाद ने ये कहा कि यदि गुरु पुत्रों में मेरा द्वेष में थार न है, तो उसके प्रभाव से ये जीवित हो जाऊं। तो जी तो भक्त का भाव तो ऐसा होना चाहिए जैसा प्रहलाद का था और जैसा अम्बरीश का था। और भगवान के चक्र का यही कर्तव्य है। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, तो भगवान का जो चक्र है इसी प्रकार से गदा है। तो ये दुष्टों का संहार करने के लिए है। और कोई भी एक प्रकार से थी उनके ऊपर अत्याचार करे तो उसको शिक्षा देने के लिए। ऐसे ही हमारे हृदय के मां जो काम क्रोध लोभ मोह है, वे आक्रमण करे तो उनको मारने के लिए भी वह शस्त्र तैयार है, भीतर से भीतर उनको विनाश कर दे। भगवान का जो शंख है, इसकी कथा ये आती है कि ध्रुव को जब छुआ दिया तो छुआने के साथ ही सारे शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव को हो गया। ध्रुव ने कहा, प्रभु आप वर मांगने के लिए कहते हो, तो मैं यही वर मांगता हूं कि मुझको वेद और शास्त्रों का ज्ञान बिना ही पढ़े हो जाए। तो 5 वर्ष का ध्रुव था, उसके गाल के संग छुआ दिया, सारे शास्त्रों का ज्ञान बिना ही पढ़े ध्रुव को हो गया, 5 वर्ष के बालक को। और दूसरे काम में भी शंख आता है, जिस समय के बीच के मां शत्रुओं के हृदय को कंपित कर देते हैं संघ बजा करके। महाभारत में यह बात जगह जगह आती है। जब कैरव पांडवों की लड़ाई होती थी, उस समय के बीच के मां अर्जुन के रथ पर बैठे हुए भगवान 5 जन संघ को बजाते थे और अर्जुन देवदत्त संघ को। तो इससे धृतराष्ट्र पक्ष के जो योद्धा है उनके हृदय विदीर्ण हो जाते थे। भगवान की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र लेकर के युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ये बात तो नहीं थी कि शंख नहीं बजाऊंगा। तो भगवान तो अपने शंख से ही सारा काम कर लेते थे। इसी प्रकार से हनुमान जी जो है वह ध्वजा के वहां बैठे हुए गर्जना करते थे तो समझो कि दुष्ट एकदम घबरा जाते थे प्रतिपक्षी। कहीं कहीं तो ऐसी बात आती है कि हनुमान जी की गर्जना को सुन करके और हाथी और घोड़े मलमूत्र का त्याग करने लग जाते। तो अर्जुन और भीम बाणों से और गदा से जो काम लेते थे, हनुमान जी गर्जना से और भगवान सिंह वो जाकर वो काम ले जाते थे। और भगवान का जो चौथा जो कमल है इस को दिखला करके भगवान ये आदेश देते हैं कि सृष्टि की आदि के मां मेरी नाभि से एक कमल पैदा हो और उस कमल से ती ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से ती यह सारी संसार उत्पन्न हुई। सारी संसार की उत्पत्ति करने वाला ये मेरा कमल है, ये भगवान दिग्दर्शन कराते। चार आयु है तो ये चारों आयुधों की बात आपको बतलाई, मैं अपने भाव के अनुसार बतलाई है, कहां तक ठीक है कहां तक बेठीक है ये तो भगवान नहीं जाने। भगवान का जो तत्व और रहस्य है और भगवान के आयुधों का